ओम शांति। ज्ञानी और योगी जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण स्वभाव की सरलता और नम्रता। हम सभी के बीच में ऐसा ही ज्ञान और योग का प्रैक्टिकल स्वरूप जिन्होंने बनाया है, ऐसी यज्ञ की विशेष विभूति उपस्थित हैं, आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार करुणा भाई जी। हम सब बहुत प्यार से एक हाथ की ताली से भाई जी का स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिन जिन मधुबन निवासियों को आज सवेरे से पता चला, अनाउंसमेंट सुना ना सभी ने कि आज करुणा भाई जी का क्लास है, भाई जी इतने खुश हो रहे थे सब। शशिकांत भाई, चंद्रशेखर भाई सब कहे, हो भ्राता जी आ रहे हैं, भाई जी आ रहे हैं। कई सालों तक मधुबन पांडव भवन में आप रहे हैं और सबके दिलों को जीतने की सबसे बड़ी सेवा भ्राता जी ने की है। बचपन से ही बाबा के बने और यज्ञ में समर्पित हो गए। बाबा का सबसे बड़ा वरदान कहो तो आपको यही है कि आपने बाबा और मम्मा दोनों की पालना ली हुई है और इतने सुंदर अनुभव सुनाते हैं बाबा मम्मा के साथ के कि यही लगे कि हम अभी देख रहे हैं, वो अनुभव हम खुद कर रहे हैं। आदरणीय भ्राता जी हमारी मीडिया विंग के चेयरपर्सन हैं और समग्र भारत देश में और विश्व में हम सभी जो मीडिया द्वारा अभी बाबा की संस्था की प्रत्यक्षता को देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा आदरणीय भ्राता करुणा भाई जी का है। तालियों से भाई जी का अभिवादन हम सभी करेंगे। कितनी मेहनत, विश्व का कोई देश अभी बाकी नहीं रहा है जहां पर मीडिया ने बाबा के ज्ञान को न पहुंचाया हो। तो आज ऐसी विशेष आत्मा हम सभी के बीच में है। आज का विषय है ब्रह्मा बाप समान बेफिकर बादशाह स्थिति, आदरणीय करुणा भाई जी।
ओम शांति। आप सबको देख के मुझे थोड़ा सा दिल में, देखो हम लोग नीचे रहते हैं पर आप कितने भाग्यशाली हो जो स्वयं ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की चरित्र भूमि में तपस्या कर रहे हो। आश्चर्य होता है ये भी ड्रामा में बाबा का कैसे अचानक मधुबन का पार्ट खुल गया। जैसे नीचे अव्यक्त बाबा से मिलने का वो बैज मिलता था, स्टेज पे जाते थे, वो सब कैसे बंद हो गया एक ही दिन में। पर ये बाबा ने पार्ट नया शुरू कर दिया, खोल दिया। तो इतना आकर्षण भूमि है ये, सारे विश्व के लिए ये स्थान एक दर्शनीय स्थान बनेगा। अभी भी बन गई है और आगे भी बनेगा। जो बाबा कहते थे बम्बई से अबू तक क्यों लगेगा, और वो समय आ रहा है। पर आप महान भाग्यशाली हो तो आप यहां तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि यही स्थान है जो हमारे लिए भी एक नया जन्म दिया। जब मैं फर्स्ट टाइम यहां आया था सन 1960 में, कोई इस ख्याल से नहीं आया था कि मैं ब्रह्मा कुमार बन जाऊं या सरेंडर हो जाऊं, या वो संकल्प नहीं था। यही संकल्प था कि मैंने दादी जी से वहां पूछा कि 3 दिन का कोर्स के बाद तो पूरा हो गया आपका ज्ञान, क्योंकि 3 तो चित्र थे, कल्पवृक्ष, त्रिमूर्ति और चक्कर, बस दूसरा कोई चित्र था नहीं। तो वो भी समझाने में 3 दिन लगाया उन्होंने। तो मैंने कहा अभी भी कुछ है समझाने का? तो उन्होंने कहा मुरली है। तो मैंने कहा ये क्या होता है मुरली, तो हमने यही देखा है, ये मुरली क्या है? तो बोला हम आपको कल सुनाएंगे। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि दादी जी मुरली बजाएंगे, वाह ये तो देखना ही चाहिए। तो जब आया तो एक उन जमाने में जो लिथो करते थे, वो पुरानी सिस्टम लिथो मशीन से, तो वो हाथ में लेके, वो भी सिंधी में लिखा हुआ था, क्योंकि उन दिनों में हिंदी का तो इतना नहीं था, सिंधी का दादियां पढ़ते थे। तो उसे पढ़ने शुरू कर दिए, तो 3 पेज 4 पेज पूरा था वो, तो सुनता गया। तो बाबा की तो लहर थी सागर जैसा, कभी परमधाम तो कभी सतयुग, कभी संगम, कभी बाबा का तो लहर ही लहर चलता था। तो मैंने कहा ये कहां से आता है, ये तो आपके पास तो ये लिखा हुआ आया है, तो ये कहां से आता है आपको, आप बैठ के सुबह लिखते हैं या क्या है? तो उन्होंने बोला नहीं, ये अबू पर्वत से आता है, वहां ब्रह्मा बाबा है तो वहां से आता है। तो मैंने कहा ब्रह्मा बाबा लिखते हैं ये बैठ के या क्या है? तो उन्होंने नहीं नहीं नहीं, वो उनके तन में शिव बाबा आते हैं। मैंने कहा ये समझ में तो नहीं आता है, ब्रह्मा बाबा भी नहीं लिखते हैं और शिव बाबा इनके तन में आते हैं, तो फिर क्या होता है? तो शिव बाबा लिखता है। तो उन्होंने कहा नहीं, शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं, बोलते हैं, तो फिर ये लिखा किसने? तो बोला वहां एक हमारी इशु दादी है, वो उन जमाने में स्टेनोटाइपिस्ट कहते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह में काम करते थे, वो शॉर्ट हैंड में लिखते थे, स्टेनोटाइपिस्ट। मैं समझा कोई स्टेनोटाइप होगी वहां, तो जो बाबा बोलते हैं वो लिखते हैं। कहते हैं वो नहीं, वो बहुत हुशार है, वो लिखती है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो ब्रह्मा बाबा नहीं, उसमें शिव बाबा आता है, शिव बाबा आकर के सुनाते हैं, फिर एक दीदी लिखती है, फिर उसके बाद मैंने कहा क्या होता है उसके बाद? तो उन्होंने कहा मातेश्वरी है वहां, वो उसको करेक्ट करते हैं, माना जो कोई गलती हुई हो। तो मैंने कहा वो कैसे करेक्ट करेगी? तो उन्होंने कहा मातेश्वरी नंबर 1 है, एक्यूरेट है, जो बाबा की एक एक अक्षर को सुनती है वो, और छप जाता है उसके अंदर। लिखने वाली की कुछ कमी हो सकती है नीचे ऊपर, पर मम्मा का नहीं हो सकता। कहते हैं मम्मा जो बाबा की मुरली सुनती है, अक्षर सा वो मम्मा के दिल में वो चला जाता है। तो इशु बहन जो लिखी है वो मुरली मम्मा के पास जाती है, फिर मम्मा उसको करेक्ट करती है, कहीं मिस्टेक हुई हो या कहीं शॉर्ट में लिखी हो कुछ है, पूरी तरह से एक्यूरेट मम्मा उसको करती थी। उसके बाद वो साइक्लोस्टाइल होता था, टाइप करते थे, साइक्लोस्टाइल हो करके सभी सेंटर पे आते हैं। बात तो लंबी हुई, मैं सारा सुना, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आया, ज्ञान तो बहुत अच्छा, ये ब्रह्मा बाबा नहीं सुना रहे हैं, शिव बाबा सुना रहे हैं, इसके तन में आ रहे हैं। तो अब मैंने कहा कि भाई फिर मुझे सुनना हो तो क्या करेगा? तो कहा तो आपको तो वहां ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उन जमाने में वो टेप रिकॉर्डर ये वो वगैरह कुछ नहीं था, कोई आवाज सुनने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मुझे भगवान के महावाक्य सुनना है तो अबू ही आना पड़ेगा, दूसरी कोई रास्ता नहीं है। तो मैंने हिम्मत रखा, मैंने कहा दादी जी मैंने अभी 3 दिन का तो सुन लिया आपका, अब तो मुरली ही सुनना है, तो आप पढ़ के सुनाओ मुझे। वहां से आने में भी पता नहीं कितने दिन लग गया होगा, तो क्यों नहीं मैं वहां ही जाके सुन लूं। 3 दिन का बच्चा, 3 ही दिन हुआ है। तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया, ये कह रहा है कि मैं माउंट आबू जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, पहले आपको निश्चय होना चाहिए, पहले आपको। मैंने कहा मुझे निश्चय है ना, आप बोल रहे हैं तो मैं समझ गया, तो वहां भगवान सुना रहा है तो आप भी वही पढ़ रहे हो, तो मुझे तो आबू जाना है। तो उन्होंने फिर कहा भाई कभी बाबा बाहर जाते हैं, ये है वो है, तो हम फाइनल पूछेंगे। तो इस तरह से करते करते इन्होंने 3 मास तो मुझे रोज मुरली सुनाते रहे और मुझे अच्छा लगता रहा और इंटरेस्ट बढ़ता गया। मैंने कहा अब तो भगवान से ही सुनना है, मुझे डायरेक्ट सुनना है, ये कोई मनुष्य का नहीं है, वो पक्का हो गया। मुरली में इतना निश्चय हो गया कि ये ज्ञान तो निराला है, ये तो भगवान के अलावा और कोई नहीं सुना सकता है, तो मुझे डायरेक्ट भगवान से सुनना है। तो ऐसा करके मैंने वहां से 3 मास के बाद आबू आया। किस भाव से आया कि भगवान इसके तन में आके सुनाते हैं, वो सुनना है मुझे। जैसे अव्यक्त बाबा के लिए आप सभी आते हैं, अव्यक्त बाबा द्वारा स्वयं भगवान कैसे सुनाते हैं डायरेक्ट, थोड़ा फर्क है। गुलजार दादी को कुछ नहीं पता होता है, एक अक्षर भी नहीं। जब दादी नीचे आती है ना तो हंसते थे हम लोग, हंसाते थे दादी को, दादी आपको कुछ नहीं पता, आज बाबा ने ऐसा बोला ऐसा बोला। उसको ऐसा होता था हमको सुनाओ ना, क्या बोला बाबा ने आज, क्या बोला बाबा ने आज। पर ब्रह्मा बाबा की बात ही दूसरी थी। वो तो उसको तो इतनी नशा इतनी खुशी थी, कहते हैं कि आप सब तो बाद में सुनते हो, मेरा तो देखो यहां से निकलता है यहां सुन लेता हूं, यहां से निकलता है यहां सुन लेता हूं, मैं नंबर 1 सुनता हूं। ब्रह्मा बाबा को ये नशा था। तो जब मैं यहां आया तो मेरी एक ही संकल्प थी कि मैं भगवान का डायरेक्ट सुनूं। मुझे एक पार्ट उन्होंने पक्का कराया था उस समय पर, जो निश्चय बुद्धि जो कहते हैं ना बच्चे, जो निश्चय बुद्धि है बच्चे, उनका एक प्रश्न का उत्तर हमको वहां टीचर्स हमको सिखा के भेजते थे। बाबा आपसे पूछेगा कि बच्चे आप पहली बार आए हो, तो सचमुच पहली बार ही तो आए हैं। तो मैंने कहा मैं तो बोलूंगा हाँ हाँ बाबा मैं पहली बार ही आया हूं। तो बोला नहीं नहीं नहीं, आपको ये कहना है कि 5000 साल पहले मैं आया था, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, थोड़ी समझ में नहीं आया ये क्या कह रहे हैं और क्या कहूं। तो भावना तो थी, तो मैंने कहा ठीक है दीदी मैं ऐसे ही बोलूंगा बाबा को 5000 साल, पर मन में नहीं बैठता था कि भाई ये मैं सही सच बोल रहा हूं, तो ऐसा चल रहा था। फिर भी वो पक्का करा रहे थे कि देखो क्यों, क्योंकि बाबा ने पहले ही कहा था कि समझो ऐसा कच्चा स्टूडेंट ले आएगा तो टीचर फेल। तो वो टीचर को यही है कि भाई बाबा मुझे फेल कर देगी अभी, ये कहीं सच ये बोल दिया कि भाई मैं हाँ बाबा मैं पहली बार आया हूं, तो वो टीचर को कहेगा देखा ये टीचर कच्ची है ये फेल है, ऐसा बाबा सबके सामने बोल देते थे। तो इसलिए मुझे आने टाइम पर ट्रेन में भी पक्का कराते थे कि भाई ये पक्का है ना आप। हाँ मैंने कहा मैं जरूर बोलूंगा 5000। और हुआ वैसा कि बाबा के सामने आप जान सकते हो कि बाबा बाबा है, और उसके सामने बैठते ही सब कुछ भूल गया, कुछ नहीं याद है। और सचमुच बाबा ने पूछ लिया कि भाई बच्चे पहली बार आए हो? हाँ बाबा पहली बार। सारे लोग ऐसे, वो हमारे टीचर तो तो ये पहली बार बाबा के सामने मेरा अनुभव। उसके बाद तो कई बार ऐसा अनुभव हुआ था बाबा के सामने एकदम बुद्धि काली हो जाता था। अपने को बहुत होशियार समझते हैं, पढ़े लिखे समझते हैं, और बहुत कुछ बाबा से पूछना है ये सब। जैसे ही बाबा के सामने दृष्टि बाबा का मिलना देरी है, सब कुछ भूल जाते थे। एक बार तो यहां तक हुआ तो मैंने लिख के इसमें जेब में रख के गया कि भाई इस बार तो मैं भूलूंगा नहीं, मैं बाबा से ये प्रश्न पूछना ही पूछना है मुझे। तो बाबा के सामने गए, दृष्टि ली, बाबा ने हालचाल पूछा, अपने मस्ती में उठ के चले आए, और बाहर आने के बाद कहते अरे ये तो रह गया। ये हर बार का बाबा के साथ का ये अनुभव है। बाबा कहीं हम बच्चों से बैठ के कोई बात पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो फिर बाबा का ये यूजुअली ब्रह्मा बाबा की दो विशेषता थी कि जब भी हम मिलेंगे तो बाबा पूरा समाचार सुनता था। जैसे ऐसे नहीं कि भाई भगवान तो जानी जान ना रहे ना, तो उसको तो सब पता है ना, ऐसा नहीं। तो बाबा को सब कुछ पता होते हुए भी बाबा हम बच्चों से पूरा जानना चाहता था, और बाबा हमको प्रॉपरली उस बात पर गाइड करते थे। तुमने ये ठीक कहा बच्चे, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, इस प्रकार। इसके अलावा भी ब्रह्मा बाबा में एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि लौकिक का भी बाबा जरूर पूछते थे, आपका मम्मी पापा कैसे हैं, आपका जॉब कैसा है, आपकी दिनचर्या कैसे हैं, हर बात का। बाबा ऐसा नहीं कि ज्ञान सुना दिया, कोर्स को दे दिया, मुरली पढ़ के सुना दिया, भाई आप जाओ अभी, मुरली पूरा हो गया, ऐसा बाबा नहीं था। बाबा तो लौकिक और अलौकिक दोनों का एक मूर्ति था। आप कहेंगे लौकिक में क्या विशेषता है ऐसा, पर ब्रह्मा बाबा की लौकिक का अनुभव भी इतनी जबरदस्त थी, जिसको हम कहते हैं ना मास्टर ऑफ ऑल। तो बाबा को लौकिक का भी इतना नॉलेज था, ब्रह्मा बाबा को हर बात का बाबा गाइडेंस दे सकते थे, बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो। तो कभी हमको ऐसा नहीं लगा कि भाई ये अलौकिक बाप ही है ब्रह्मा बाबा, ऐसा नहीं। और पहला मिलन में जैसे ही बाबा का कमरे, जो यही कमरा है अभी भी, मैं बाबा के पास बैठ के आया, यही कमरा था, थोड़ा सा इन्होंने मॉडर्न किया है, अदरवाइज बिल्कुल यही कमरा था। और जैसे ही बाबा का कमरे में गया, तो मैं तो साउथ से आया था, अनेक साधु संतों से मिला हुआ, और वहां ऐसा सिस्टम है जैसे ही संतों के पास जाते हैं तो हम एकदम सो जाते थे, उद्दांड नमस्कार कहते थे, एकदम ऐसे सो। तो मन में तो यही करके आया था, क्योंकि यहां तो वो सिस्टम है या नहीं, पर मुझे तो वही करना है, क्योंकि ये भी तो हमारे लिए गुरु है। तो मैं बिल्कुल तैयार होके आया था कि भाई बाबा को जाते ही ऐसा। तो बाबा भी मेरे लिए तैयार बैठे हैं, ऐसा लग रहा था कि बाबा खड़े हुए थे। जब मेरा जाने का टाइम पर, और बाबा ने दोनों हाथ ऐसे करके, आओ बच्चे, ऐसा बाबा ने किया। अब मैं कैसे सो जाऊं, मैं देख के हैरान हो गया, अब मैं क्या करूं। तो बाबा यूं कह रहा है, आओ बच्चे, ये पहला शब्द बाबा का, आओ बच्चे, और दोनों हाथ ऐसा। तो आराम से गले मिल लिया बाबा का। वो अनुभव आज तक भी वो पहला बाबा के जो मिलन का जो है वो कभी भी मैं नहीं भूल सकता। मैं जब भी याद करूं मैं बाबा के गोद में समा सकता हूं, इतना आनंददायक वो सीन रहा। और वही शब्द, एक ही शब्द कानों में गूंजता रहता है, आओ बच्चे, आओ बच्चे। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए लास्ट शब्द भी हो सकता है कि जब हम, मुझे अभी बस बाबा के पास जाना हो तो वहां भी बाबा यही कहेगा, आओ बच्चे। तो वही सीन जैसे, वही शब्द जैसे, सदा ही जैसे गूंजता है। वो बाबा की मिलन मुझे, जैसे अभी यहां भी अभी सरेंडर सेरेमनी करने वाले हैं, शायद सरेंडर के लिए बहने आने वाले हैं, या कुछ भाई भी कभी कभी होता है, तो हम लोगों को ये पता ही नहीं है वो सरेंडर क्या होता है क्या है। पर वही जो बाबा का मिलन, वही हमारा जैसे जीवन का लास्ट फैसला था, जिसको हम कहते हैं लव इन फर्स्ट साइट। तो बाबा से पहली मुलाकात, नयन मुलाकात हुई, और वही फर्स्ट और वही लास्ट, मेरा बाबा। उसके बाद कोई भी कभी भी संकल्प भी नहीं आया कि कोई लौकिक भी है। कई बार मैं बाबा को बोलता था, बाबा मुझे उस दुनिया में नहीं जाना, उस कलियुगी दुनिया में वापस नहीं जाना मुझे। तो बाबा कहते थे, जब आते हैं तो ये बाबा को जरूर बोलता था मैं, बाबा मुझे वापस नहीं जाना उस कलियुग में। बाबा कहते नहीं नहीं जाना बच्चे, नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। पर हम सबको पता है कि 7 दिन से ज्यादा यहां रहने नहीं देते किसी को, फिक्स है 7 डेज मैक्सिमम। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बड़े मजा। तो बाबा ने कह दिया इस बार, हाँ बच्चे आपको नहीं जाना ऐसा। 5वां और छठे भाषण शुरू हो जाता है, जो बादल भर जाता है वो जाके बरसता है। तो अभी मैंने कहा अब मैं क्या बोलूं, ये बादल अभी भरा नहीं है तो बाबा इतना सुना रहा है। तो ऐसे ऐसे बाबा युक्ति से ये कर देंगे, जाना थोड़ी है बच्चे, ये तो घर है और वो तो आप बस बरस के आ जाने का, सेवा करके आ जाने का, सेवा के लिए जाना है, सेवा करके आ जाने का। और कहां जाएंगे, घर पे ही तो आएंगे ना। जो बच्चे नौकरी करने जाते हैं तो घर पे आते हैं ना, तो ऐसे बस जाके सबको बाबा का बरस के आ जाने के वापस। ऐसे ऐसे कुछ करा देते थे, 7वां दिन तो ऐसे रुमाल हिला के जरूर लास्ट में बाबा गोद में फिर ले लेते थे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ बिना आंसू के गए हो, कभी ही नहीं। हर बार आंसू बहा के ही गया था कि भाई बाबा कहां भेजा है। तो इस प्रकार भगवान के जो जादू है, और दिल को जीतने का, अपना बनाने का, मतलब सब प्रकार के रस जैसे बाबा हम बच्चों को देते थे। ऐसा नहीं लगता था कि भाई ये गुरु है तो बस भाषण किया पूरा हो गया, नहीं। जैसे घर में जैसे अपना बाप होते हैं, वो भी इतना ध्यान तो नहीं रखते होंगे जितना बाबा हमसे रखते थे। ऐसा कितने बाप होंगे जो बच्चों को गिट्टी भी खिलावे और ये भी करे, नहीं। बाबा एक दिन हमारा फिक्स होता था, हम लोगों को जरूर बाबा, जो बाबा खुद खाते थे, इतने छोटे छोटे रोटी होती थी बाबा के लिए स्पेशल होता था, तो वो बाबा एक गिट्टी जरूर खिलाते थे बिठाते। वैसे भी हम थोड़े बच्चे थे, गिनती के थे। अभी देखो 20,000 25,000 मधुबन में आते हैं ना बाबा से मिलने, तो हम लोग कहते थे आज मधुबन फुल हो गया है। कितने हैं? 10 या 15, मधुबन फुल, ओवरफुल हो गया है। तो आपने देखा होगा इशू दादी का ऑफिस अभी भी वहां है नीचे, उसी का थोड़े से जगह में हमारी क्लास होती थी, जिसमें बाबा भी बैठते थे, मम्मा भी बैठते थे, और वहां क्लास होता था। ये हिस्ट्री हॉल ये वगैरह बाद में बना, 62 में हिस्ट्री हॉल बना। तो इस प्रकार बाबा हमको जो 7 दिन कैसा चला गया कुछ नहीं पता होता था, कब दिन हुआ कब रात हुआ मालूम नहीं पड़ता था, सारा टाइम यही ध्यान होता था कि भाई बाबा कब उठे, बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा कहां गए, और कोई चीज नहीं ध्यान में। और 7 दिन ऐसे चला जाता था कि भाई ऐसे लगता था कि भाई क्या करे। इस तरह से बाबा भरपूर करके इतनी शक्ति देते थे। तो जाके फिर संदेश, उन दिनों में पूना तक ही आश्रम थे, पूना से साउथ में कहीं भी नहीं था। तो बाबा ने जैसे निमित्त बना करके पूरे साउथ में बाबा का संदेश देने का, आज तो हजारों बाबा का सेंटर्स है वहां पर। बाबा ने उस टाइम पर ये जैसे एक पालना दे करके, सिर्फ मैं नहीं, जैसे मेरे साथ साथ में रमेश भाई बॉम्बे, निर्वर भाई भी उस समय पर बॉम्बे में थे, और यहां उत्तर में अपने ओम प्रकाश भाई, ब्रिजमोहन भाई, महेंद्र भाई, ऐसे जगदीश भाई तो थे ही, वो हम सबसे सीनियर थे। इस प्रकार हम ज्यादा से ज्यादा 8-10 भाई, जो बहनों की संस्था में भाइयों का जो बाबा ने नेक्स्ट ग्रुप जो निकाला है, उस समय पर सब लोग निमित्त बन गए। एक एक कार्य के लिए ऐसे निमित्त बन गए जो सारे भारतवर्ष में जैसे बाबा का संदेश देने का निमित्त बनाया बाबा ने। और मुझे बाबा का सबसे आकर्षण इस बात की थी कि हर सप्ताह 2 लाल लेटर बाबा का आता था, इसको हम प्रेम पत्र कहते थे। तो समझो एक दिन भी किसी भी कारण से लेट होता तो बस पोस्टमैन का इंतजार करते रहते कि भाई पोस्टमैन कब आएगा और वो लेटर कब आएगा। मतलब जिंदगी में और कोई चीज की इंतजार नहीं था सिवाय बाबा के वो लाल पत्रों का। इतना मतलब अच्छा लगता था बाबा का जो 2 अक्षर, इतनी नशे चढ़ते थे बस ऐसे रखेंगे, पढ़ते रहेंगे उसको, अपने पास रखेंगे। तो इस प्रकार बाबा ने दूर रहते हुए भी बाबा पालना ऐसा देते थे जो हम कभी भी भूल नहीं सकते थे। बाबा और हम, मेहनत अब करना पड़ता है, योग करना पड़ता है, पर उस समय पर जब तक बाबा साकार बाबा और मम्मा थे, हमको कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई हमको बाबा को याद करना है। तो बाबा और हम कोई अलग है, दूर है, ऐसा कभी नहीं लगा। ये एक विशेष अनुभव साकार बाबा और मम्मा तक हमको था। तो आप कहेंगे बाबा इतनी पालना दिया, बाबा इतना क्लोज रखा, बाबा हर चीज हमको सिखाया। जो जो यज्ञ के काम होते थे उन दिनों में, पर्चे कैसे छपाना, बैनर कैसे डालना, पोस्टर्स क्या बनाना, हर चीज बाबा हम बच्चों को सिखाते थे कि ऐसे करो बच्चे, ऐसे करो। तो हर प्रकार की नॉलेज हमको बाबा देते थे। फिर मम्मा की पार्ट फिर क्या थी? देखो घर में माँ और बाप के अलग पार्ट होता है। तो मेरे साथ पहले 5 साल बाबा से अधिक मम्मा की पालना मेरे लिए रहा, क्योंकि साउथ से आने के कारण थोड़ी भावना ज्यादा थी। तो भावना, ये ब्रह्मा बाबा तो है ही बहुत आकर्षण, पर इसके अंदर शिव भगवान भी बैठा है। शिव स्वयं भगवान जिसके अंदर हो और चेतन हो, तो आप सोच सकते हो कि भाई कितनी हम लोगों को भावना है। जो मंदिर में मूर्ति के सामने जाने में भी कितना अपने अंदर भावना रहती है। तो स्वयं भगवान आपके सामने एक मूर्ति के अंदर हो, तो हमारे से थोड़ा सा दूर रहता था, ब्रह्मा बाबा से थोड़ा डिस्टेंस, एकदम बाबा से। जैसे निर्वर भाई, रमेश भाई ये सब बात करेंगे, अनुभव सुनाएंगे, तो हम तो बाबा के साथ घूमते थे, खेलते थे, सब सही है, परंतु मैं भी खेला था, बट भावना इतनी थी कि भाई मैं किसके साथ, मैं ब्रह्मा बाबा के साथ नहीं शिव बाबा के साथ खेलता मेरे में और दूसरों में ये अंतर था कि भाई मुझे ब्रह्मा और शिव बाबा अलग दिखते ही नहीं थे, मैं तो ऐसे ही देख रहा था कि जैसे ये बाबा है ही है इसमें। दो का अंतर केवल क्लास में मालूम होता था क्योंकि ब्रह्मा बाबा बैठ करके जब गीत थोड़ा सा शुरू हो जाता था बाबा ऐसे कहते थे, कभी भी पूरी गीत नहीं बजता था, फिर बाबा की एक आवाज आती थी ऐसा, वो मुरली में आज भी है, वो आप टेप चलाएंगे तो आपको ऐसा। तो हम सब छोटे थे 20-21 साल के, जो पास बैठते थे इसको बोलते शेर आया ऐसे बोलते थे हम लोग। माना वो एक टाइम था जो पूरे शिव बाबा की फुल अथॉरिटी का और स्वरूप का अनुभव हमने किया, क्योंकि जो बाबा मुरली चलाते हैं, जो वो गर्ज जिसको कहते हैं, गर्जना जिसको कहते हैं, वो ब्रह्मा बाबा में कभी भी हमने नहीं देखा है। सारा दिन जो हम सुनते थे सुबह से शाम तक, ऐसे बाबा इतना मधुर, इतना स्वीट, इतना स्लो, इतना अच्छा। अरे जब संदली पे बैठ के जब मुरली चलता था तो वो जो गर्जना है वो तो शेर ही था। तो सबको मालूम है कि भाई अभी ये शिव बाबा बोल रहे हैं, ये ब्रह्मा बाबा ने। बीच बीच में कभी ब्रह्मा बाबा का भी एक आधा शब्द, जब बाबा बोलते थे कि भाई बच्चे होशियार है होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए ऐसा, तो कभी कभी बाबा, क्योंकि मैंने बताया ना ब्रह्मा बाबा सुनता था और नंबर वन बन के सुनता था, तो कभी कभी बोलता था बाबा मैं बुद्धू नहीं हूं, मैं भी कर सकता हूं, ऐसे कभी कभी बाबा का शब्द आता था उसमें। हम लोग कहते थे देखो देखो ये ब्रह्मा बाबा ने बोला है, ऐसा हम लोग पॉइंट करते थे। तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का अंतर देखा हो तो वो एक टाइम पर ही होता था, बाकी सारे दिन में भी जब भी बाबा से दृष्टि भी ले एकदम पावरफुल जैसे शिव बाबा का ही दृष्टि मिलता था। तो इसीलिए मुझे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का अंतर मेरे जीवन में नहीं दिखाई दिया, सदा मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे दोनों। इसका एक कारण और भी है कि सारे यज्ञ में एक और आत्मा थी जो ये मानती थी कि 24 घंटा स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में है, ये विश्वास केवल एक आत्मा यज्ञ में थी, वो है मम्मा मातेश्वरी। मातेश्वरी कहती थी कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आता है, आया है, ये बोलते हैं। तो आप ये तो नहीं कहते हो आता जाता है। तो जब आप कह रहे हो कि स्वयं भगवान ब्रह्मा के तन में आया है, तो आप ये क्यों भूलते हो कि भाई अभी इसमें है या नहीं है, ये चक्कर में क्यों जाते हो? और मैंने प्रैक्टिकली ये देखा था, चाहे मम्मा दूसरी संदली पे बैठती थी बाबा होते हुए, साकार बाबा होते हुए, मम्मा कभी भी सिर नहीं उठा के देखती थी, एकदम मम्मा की दृष्टि नीचे। मतलब पूरा ऐसा ध्यान कि जैसे स्वयं भगवान ही है, भगवान के सामने हूं मैं, ऐसा। भले बाबा किसी काम से मम्मा को बुलाएंगे भी, मम्मा बाबा के सामने आएंगी भी, पर एकदम जैसे ऐसा। और मैंने कभी ये नहीं सुना मम्मा कोई बाबा को कोई जवाब देता हुआ सिवाय एक शब्द, जी हां जी हां। मम्मा को बाबा के हर शब्द जैसा ऑर्डर है, मम्मा अपना राय दे, मम्मा डिस्कस करे, मम्मा ये कभी मैंने नहीं देखा। मम्मा ऑलवेज जी बाबा जी हां। इसके अलावा दूसरा शब्द मैंने कभी बाबा के सामने नहीं सुना, इसका मतलब मम्मा कोई ऐसा ही नहीं थी। मम्मा जब भी भाषण करती है शेर से भी बढ़कर शेरनी थी। मम्मा की भी भाषण इतना जबरदस्त, इतना पावरफुल होता था, और बाबा के जो सुनाए हुए ज्ञान का स्पष्टीकरण, भाषण कैसे करना, किसी बात को कैसे समझाना, ये हम सबने मम्मा से सीखा। जितनी भी दादियां हैं आज वो अच्छे भाषण करते हैं, तो सबका टीचर मम्मा थी। और मम्मा का भाषण, बाबा भी कहते थे मम्मा नंबर वन है, ये ज्ञान की देवी है, ये वीणा बजाती है। और जो अक्षर सा बाबा भूल सकता है, मम्मा नहीं भूलती है। मम्मा को बाबा ने ड्यूटी दिया था कि बाबा ने जो ज्ञान सुनाया उसको मम्मा बाबा आने से पहले दूसरे दिन मम्मा उसका पूरा विवरण देती थी। कल बाबा ने ये समझाया, ये समझाया, ये समझाया। और बाबा कभी कभी क्या करते थे, तो क्लास की दरवाजे से थोड़ा साइड में खड़े होके सुन लेते थे। हालांकि टक टक आवाज होता था बाबा का, लकड़ी का वो पहनते थे, वो शब्द मम्मा का कान में पड़ते ही मम्मा बंद कर देती थी, एकदम स्टॉप। भले आधा शब्द होगा आधा सेंटेंस होगा, बंद कर देती। कई बार बाबा कहते थे नहीं मम्मा सुनाओ, बहुत अच्छी सुना रही थी, सुनाओ मम्मा सुनाओ, पर एक बार भी नहीं सुनाया मम्मा ने। बाबा की तक तक से ही मम्मा एकदम बंद कर देती। पर एक दिन बाबा ने थोड़ा सा होशियारी करके धीरे से आके साइड पे सुनते रहे बाबा। और मम्मा को जैसे ही मालूम पड़ा बाबा आ गए हैं, तो मम्मा ने एकदम बंद किया। तो बाबा ने हंसते हंसते कहा, हाँ मैंने आज मम्मा का सुना, मैंने आज नहीं तो बाबा के सामने मम्मा कभी नहीं बोल। मतलब भगवान के सामने हम है, ये जो निश्चय और भावना, ये केवल मम्मा में मैंने देखा। तो ये भावना जो है ये हमको बहुत मदद किया। अव्यक्त बाबा हुए तब भी मुझे याद है कि शॉक तो हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया ना, लव इन फर्स्ट साइट, जैसे बाबा हमारे लिए जैसे सब कुछ था, माता पिता बंधु सका सब कुछ एक बाबा था। और जैसे ही टेलीग्राम आया बाबा ने अव्यक्त हुए, तो बिल्कुल ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई सती को, पत्नी को जैसे पति चला जाता है कैसे होती है, ऐसी हालत जैसे उस टाइम पर एकदम सुन जैसा, क्योंकि सब कुछ वही था। और अब क्या होगा, क्योंकि मम्मा तो 65 में शरीर छोड़ दिया था, तब भी बहुत इफेक्ट हुआ था, क्योंकि माँ उनसे मम्मा से पूछे बिना हम बाबा से बात भी नहीं करते थे। मैं बाबा से बात भी करना हो तो मम्मा से पहले पूछ के, मम्मा ये बाबा से पूछूं ये कहूं, फिर मम्मा मुझे सिखाती थी ऐसे पूछो ऐसे बोलो ऐसा। तो जैसे छोटा बच्चा जैसे मम्मा के सामने होता था, फिर बाबा से बातें करते थे। तो फिर बाबा ने ऐसा एक अपना पार्ट बदला 65 के बाद। बाबा कहा कि माँ तो यही है, ये तो बड़ी माँ है, इस तरह से बाबा की मुरली चली। और हम सब बच्चों को बाबा ने दिल जीत लिया, और रूप भी थोड़ा सा बाबा ने बदला, जो बाप का वो स्वरूप था उससे थोड़ा सा माँ के स्वरूप से, जैसे बच्चों को प्यार करते हैं इस तरह से, आओ बच्चे, बच्चे को ये खिलाओ, बच्चे को ये करो। बाबा थोड़ा सा अपना पार्ट को बहुत चेंज किया था, तब जाके बाबा ने हम सब बच्चों का दिल जीत लिया था। पर हुआ ये कि जैसे बाप और माँ दो थे, चलो माँ नहीं है, बाप ने दोनों रूपों से हमको पालना दी, और वो बाबा चला जाए तो हमारा क्या होगा। तो वो इतना इफेक्ट हुआ माइंड पे, जो यहां आकर के बाबा की पहली पहली मुरली जो बाबा ने चलाई, जब वो सुना तो तो तब जाके आत्मा में फिर से एक आया, बच्चे मैं कहीं नहीं गया, मैं यहाँ ही हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये तो पुराना शरीर है, इससे कुछ नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए मैं आप सभी बच्चों के साथ रहने के लिए ये शरीर को त्यागना पड़ा। तो अव्यक्त बाबा भी मुलाकात में भी हमने पहली बार थोड़ा सा शर्म हुआ मुझे, ये क्या किया बाबा ने, हम सब कुछ छोड़ के चले गए, ऐसे मैं यूं करके बैठा, क्योंकि मैं गुलजार दादी को तो जानता नहीं था, फर्स्ट टाइम मिल रहा हूं और वो भी एक बहन के सामने, तो इसलिए यूं करके बैठा था। तो देखा बाबा ने ये बच्चा, इनको अभी तक संतुष्ट नहीं है, बाबा नहीं गया है और बाबा सामने है, बाबा तो बाबा ने एक युक्ति रचा। हर बच्चे के लिए बाबा का अपना एक प्यार से एक नाम रखता था, जैसे सब दादियों के लिए अलग अलग नाम है ना, प्रकाशमणि, नहीं तो हम लोग तो कुमार का दादी कहते थे अंत तक, जो बाबा के सामने आए हैं हम सब जानते थे तो कुमार का दादी है, पर बाबा ने जो नाम रखा था प्रकाशमणि, तो ऐसे मेरे लिए भी बाबा ने एक ऐसा नाम दिया था जो और किसी को नहीं पता, ना मैंने कभी किसी को बोला है, गुलजार दादी को तो जानते ही नहीं था, क्वेश्चन ही नहीं है किसी को बोलने का। तो जब भी मैं आता था बाबा के सामने, बाबा वो नाम जरूर बोलता था और उसी नाम से बाबा बुलाता था, बड़ी नशे से, जैसे अपना बच्चे के लिए जैसे खुशी। तो बाबा कहते ये कमाऊ पुट है, सिंधी में सब बहनों को जो लच्छू दादी वगैरह उनको बोलते थे, ये हमारा कमाऊ पुट है, ऐसा बाबा कहते थे, मना बच्चा कमाने वाला बच्चा है, यज्ञ में करने वाला बच्चा है, अपना भाग्य बनाने वाला बच्चा है, क्योंकि दूसरा एक भाई थे तो उसके लिए बाबा कहते थे ये अमेरिकन पैसेंजर है, ये खर्चेलू पुट है, मना वो खर्चा करता है ऐसा करके। तो जब बाबा ने ये नाम मुझे दिया था कि करुणा निधान, और बाबा का बोलने का भी जो स्टाइल होता था इतना अच्छी तरह से बाबा जैसे बोलते हैं, आओ बच्चे, ये पहला शब्द, इसके बाद जब बैठते हैं तो बाबा सदा ही कहते था करुणा निधान, तो वो जैसे कान में गूंजता है बाबा का सदा वो शब्द था। तो मैं गुलजार दादी के सामने यूं बैठा हूं, तो अभी क्या कहूं क्या बोलूं, बाबा तो अव्यक्त हो गए, ठीक है बाबा अव्यक्त रूप में आ रहे हैं बोल रहे हैं, पर बहन जिस बहन द्वारा बोल रहे हैं उसको तो मैं जानता ही नहीं हूं, तो कैसे ये करूं। तो बाबा ने वही शब्द जैसे मुझे बाबा बुलाते थे बोला करुणा निधान, जैसे ही बोला मुझे ऐसा शॉक हुआ, मैंने कहा ये तो वही बाबा है, वही बाबा यहाँ ही है। तो एकदम आंख उठा के मैंने देखा तो बाबा की दृष्टि जो पड़ी, मैं तो जैसे गुम हो गया, इतनी खुशी हुई कि भाई बाबा तो मेरे सामने ही है, बाबा कहीं नहीं गया। तो बाबा ने उस दिन दूसरी भी मेरी परीक्षा ली, ब्रह्मा बाबा को सब कुछ जब तक सुनाते नहीं तो दिल जैसे भरता नहीं था। एक साल तक जो भी सेवा हम करते आए हैं या जितने मास भी बाहर थे जो जो सेवा किए हैं वो सारा ब्रह्मा बाबा को सुनाना है, तब जाके दिल हल्का होता था कि हमने कुछ किया। तो अभी तो ब्रह्मा बाबा तो है नहीं, ये तो अव्यक्त बाबा है। तो मैं उसके बाद भी मैं कुछ बोला नहीं, दृष्टि जरूर लिया, खुशी जरूर हुई मुझे, पर जैसे ब्रह्मा बाबा को बोलता था वो नहीं बोला, तो मैं फिर भी चुप रहा। तो बाबा ने देखा ये तो अभी भी ये मुंह खुलता नहीं है इनका, तो धीरे से बाबा ने खुद बोलने लगा, बच्चे आपने मुझे साउथ में बुलाया था, क्योंकि बाबा साउथ इंडिया में नहीं आया था, पुणे तक बाबा आया था, अज्ञान में मैसूर महाराजा से व्यवहार था, जैसे उदयपुर का महाराजा है ऐसे मैसूर महाराजा वगैरह, बाबा लौकिक में गए थे डायमंड मर्चेंट के रूप में, बाकी शिव बाबा आने के बाद दक्षिण में कभी नहीं गए थे। मैं बहुत बार बाबा को कहा था, बाबा आप एक बार बैंगलोर आना, एक बार बैंगलोर आना। बहुत हर बार बाबा को ये हाँ बच्चे बाबा कहते थे, पर डॉक्टर तो कभी छुट्टी नहीं देते थे बाबा को। तो बाबा मेरे से पूछ रहा है, बच्चे आपने मुझे बुलाया था, बोला था कि भाई आप साउथ आना। मैं उठ के मैंने कहा हाँ बाबा मैंने बुलाया था ना आपको, पर आप देखो ना अव्यक्त हो गए ऐसे। मैंने बाबा ने कहा इसीलिए तो मुझे अव्यक्त होना पड़ा, आप देखते नहीं थे बाबा का क्या उम्र है, बाबा की क्या शरीर है, वो शरीर से आ सकते थे, डॉक्टर छुट्टी देता था, तो इसीलिए मैंने ये शरीर छोड़ा। तो देखो अभी मैं आपके पास आ सकता हूं और आया भी हूं। मैंने कहा आया भी हूं, कब आए बाबा? तो बाबा ने कहा बताऊं, तो मैं चुप रहा। बाबा ने मुझे, मैंने वहां जो जो सेवा सुनाता था साकार बाबा को, जैसे बाबा मुझे सुनाने लगा, देखो आप महाराजा के पास गए थे, आपने ये संदेश दिया था, एक एक चीज जैसे बाबा बोलते जाए। और मेरा तो वो हालत था, मैंने कहा मैं अविश्वास तो नहीं कहेंगे पर ये कहेंगे इतना कंफ्यूजन था। और जब बाबा प्रैक्टिकली हमारे साथ हो करके सब कुछ बाबा देखता रहा और हमको शक्ति देता रहा और हर चीज में सफलता प्राप्त होते रही, हम तो छोटे थे फिर भी जहां भी हम जाए वो कार्य सफल होता था। और खुशी खुशी से बाबा को हम बताते थे कि भाई बाबा ये हुआ वो हुआ। तो बाबा ने एक एक बात जैसे मुझे बताए, तो मैंने कहा बाबा मैंने जो विश्वास मुझे करना चाहिए वो न किया, तो इतना बड़ी भारी भूल जैसे लग रहा था कि भाई ये धरती फटे तो मैं इसके नीचे जाऊं, ऐसा मुझे अपने ऊपर जैसे ये हो रहा था कि बाबा ने देखा अब बच्चा ठीक हो गया, अभी बच्चे को विश्वास है। तो उसके बाद आज तक भी मुझे ये नहीं कि बाबा अव्यक्त हो गए हैं। और ब्रह्मा बाबा के लिए ये भी तो नहीं कहते कोई वो जन्म ले लिया है, ऐसा भी तो नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा जैसे अव्यक्त बाबा दोनों, जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों हमारे साथ सदा है। और कभी मैं नहीं भूल सकता हूं कि भाई मैं अकेला ही हूं और बाबा मेरे साथ नहीं है, क्योंकि बाबा ने ऐसा प्रैक्टिकली मुझे सब कुछ बता दिया था कि मैं कहूं तो बाबा बोल देगा देखो मुझे मालूम है तुमने ये किया ये किया ये किया। तो छोटेपन में पढ़ते थे ना कि भाई कहीं कोई न देखे वहां ये केला खा के आओ, तो वो बच्चा एक ने तो वापस ले आया, गुरु जी ये भगवान सब जगह में देखता है इसलिए मैं नहीं खाया वापस दिया। वो हालत है आज, दादियां हो या हम बच्चे जो बाबा मम्मा के साथ रहे, हमको भूल से भी हम ये नहीं कह सकते कि मैं अकेला हूं, हमारे साथ जैसे बाबा का चित्र छाया है। और हम याद करना जरूर चाहिए, बस याद नहीं करते तो वो बात दूसरी है, पर बाबा हमारे साथ नहीं है ये कभी भी हम सोच नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार उस समय से बाबा हम बच्चों को उसी तरह से तैयार किया। आज सारे विश्व में इतनी सारी जो सेवाएं हुई है, चाहे मैं लंदन गया वहां जाके देखा क्या वहां के जो लोग मांसाहारी है, सब जगह जो मॉल मॉल में जाते हैं ना आप, वहां तो मांस का ही वो सारा लटकाया हुआ होता है, देख के एकदम जैसे घबरा जाए। और मैंने कहा कि भई हम क्या सेवा करेंगे इन लोगों का, तो ऐसी लोग है ये मांसाहारी जिसको हम लोग राक्षस कहते थे, ऐसे लोगों के हम क्या सेवा करेंगे। तो ऐसा करके नाराज होके मैं बाबा के कमरे में आके बैठा। तो बाबा के कमरे में आके बाबा को कहने लगा, बाबा क्या है इनकी सेवा करूं यहां आके लंदन में। तो बाबा का जो जानकी दादी की ये विशेषता है, बाबा का कमरे में बहुत बड़ा बाबा का चित्र रखती है, ऑलवेज ट्रांसलाइट, इतनी बड़ी और कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो जैसे मैं ट्रांसलेट के सामने बैठा हूँ और बाबा को कह रहा हूँ, बाबा हम यहाँ क्या सेवा करेंगे, ऐसे लोग है ये, ऐसा, तो ट्रांसलेट तो गुम हो गया और ब्रह्मा बाबा का जैसे हंसती हुई चेहरा, बाबा हंस रहा है, मैं यूं यूं कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, तो बाबा हंस रहा है। तो फिर धीरे से जैसे बाबा की संदेश टच करता है, बाबा तुम तो अभी आए हो, मैं तो यहां ही बैठा हूं, तब मुझे आश्चर्य वो याद आ गई, बाबा ने कहा था कि जहां भी तुम हो वहां मैं भी हूं, तो बाबा हमारे ही साथ है, तो बाबा पहले से ही यहां बैठा है, तो बाबा करा रहा है। तो इस तरह से बाबा ने कई बार कई स्थानों पर जहां इम्पॉसिबल लगता था वहां जैसे बाबा अपने साथ ही है, और बाबा सफलता कैसे दिलाता है ये अनुभव हमने प्रैक्टिकली बाबा का हमने देखा था। तो इसी प्रकार मम्मा ने भी कुछ संस्कार हमको, जैसे बाबा के साथ भावना से ये भगवान है, तो ये हमने मम्मा से सीखा। तो इसी प्रकार मम्मा की एक और विशेष गुण था कि जब सेवा करती थी तो इतना लाइट होती थी, ऐसा लगता था कि जैसे मामा छोटा बच्चा जैसा होता है ना, इतना खुशी खुशी से इतनी अच्छी तरह से मामा हम सबसे मिल जाती थी, हम सबको ऐसा लग रहा था कि भाई मामा हमारे साथ हंस रही है, बहल रही है, सब कुछ कर रही है। पर वो एक रूप था, बाकी दूसरा सारा दिन मम्मा जब अकेली होती है, इतना गंभीर जिसको हम कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी हो, तो एक ही हमारी मम्मा एग्जाम्पल थी यज्ञ में, भले मम्मा के पास आसपास कोई आता जाता भी होगा, मम्मा को बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता था, ना ध्यान ही नहीं मम्मा का। मम्मा जिसमें जैसे कभी मम्मा सबको कुछ करने के लिए बैठ के अनाज साफ करने में भी मम्मा हाथ देती थी, कोई भी स्थूल सेवा है मम्मा वहां पहले बैठेगी, एक्यूरेट टाइम पर जाके बैठेंगी, देखो मम्मा बैठी है, मम्मा बैठी है, सब जाके बैठ जाते थे, सब जाके करना शुरू कर देते थे। पर मम्मा के सेवा करना तो एक है, सैंपल एग्जाम्पल नंबर वन एक है, पर ध्यान जो है वो अंदर होता था, कभी भी मम्मा यूं देखी चंचलता ये वो कभी मम्मा के अंदर नहीं देखा। तो वो जैसे हमको घड़ी घड़ी अपने जीवन में याद दिलाती है कि बाबा के साथ रहना है तो अपने को भी अंतर्मुखी। मुझे याद है रमेश भाई एक बार मम्मा को कार में लेके जा रहे थे, और बॉम्बे में आप जानते हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स ये वगैरह सब होता है, नई नई चीजें इलेक्ट्रॉनिक सब चीज होती थी, तो हम लोग तो देखते थे सब। तो रमेश भाई ने पूछा कि भाई मम्मा ये नया पोस्टर है आपने देखी हो, क्योंकि कार तो पास हो गई और बहुत बड़ा है तो मम्मा जरूर देखा होगा, मम्मा तो फ्रंट में थी। तो मम्मा ने एक ही शब्द कहा, कलयुग की कोई भी चीज मम्मा के लिए नहीं है, वो बात कभी भी मैं नहीं बोल सकता हूं, कुछ भी है इस कलयुग की चीज वो मम्मा के लिए नहीं है, तो फिर हमारे लिए भी नहीं है। तो मम्मा से हमने एक बार ये पूछा था, तो ठीक है कलयुग का नहीं है, परंतु आपको तो ये खुशी होगी, मैं तो राधा बनूंगी, मैं तो राधा बनूं, क्योंकि बाबा कहते थे कि भाई ये राधा है, लक्ष्मी बनेगी, राधा बनेगी। तो हमने पूछा मम्मा से, क्योंकि मम्मा से थोड़ा फ्री होते थे, बाबा से ऐसी ऐसी बातें नहीं पूछ सकते थे। तो मम्मा कहती है, मना राधा बनने की खुशी होगी मम्मा को, अब लक्ष्मी बनने की खुशी होगी, तो मामा से पूछा, कहते मम्मा नहीं, मुझे इस समय पर जो सबसे ज्यादा खुशी है तो स्वयं भगवान मुझे मिला है, मैं भगवान के साथ हूं, तो ये खुशी सबसे ज्यादा। तो मम्मा के बारे में ये भी कहते थे कि मम्मा 2:30 बजे के बाद कभी भी नहीं सोई है और मम्मा की इतनी प्यार बाबा के लिए होता था, तो प्यार की जो निशानियां है आंखों से प्रेम की आंसू जो इनकी मम्मा की एक ब्राह्मणी थी वो बताती थी, तो तकिया पे जाके देखो मम्मा की प्रेम की आंसू कैसे बाबा के लिए है। तो इतनी बाबा से प्यार मम्मा की थी, तो ये चीज हम लोग भी याद करते हैं, पर वो प्यार के आंसू की याद वो भी एक याद होती है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो हम लोगों के लाइफ में जैसे बिल्कुल बैठ गए, हम कभी भूल नहीं सकते हो बाबा की चलन, जो बाबा कहते हैं ना, नजर से, चेहरे से और चलन से प्रत्यक्षता हो, भाषण से नहीं, चलन से और चेहरे से। तो वो ब्रह्मा बाबा था, उसको देखते ही, शिव बाबा ठीक है पर ब्रह्मा बाबा भी ऐसे थे जो देखते ही ऐसा लगता था गुरु हो तो ऐसा हो, इतना अच्छा लगता था ब्रह्मा बाबा को देखते ही देखते। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को सदा ही ये कहते हैं, फॉलो फादर मदर, ब्रदर सिस्टर नहीं बोला बाप और माँ को फॉलो करो। सचमुच मम्मा की चलन हंस जैसा एकदम, कभी किसी प्रकार का चंचलता या कोई ऐसा नहीं मम्मा का, बाबा का भी एकदम जैसे नारायण जैसा चलन। तो इस प्रकार बाबा मम्मा प्रैक्टिकली हम बच्चों को जो आने वाली देवताओं की जो गुण है वो इन्होंने करके दिखाया। हम तो सदा ही यही कहते हैं कि ये ज्ञान वो है जो जीवन है, ये प्रवचन नहीं है, भाषण नहीं है। इसीलिए 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। और इस समय पर हमारे बाबा के बच्चे ज्ञान में बहुत होशियार, बहुत अच्छा लगता है, बहुत है, और सेवा में मस्त रहते हैं। पर हमने देखा बाबा ने योग खुद कराते थे। आज भी 97 इयर्स की हमारी दादी सुबह अमृत वेला उठ के कराती है, शाम को 7 से 7:30 तक खुद योग कराती है। तो योग नंबर 1 सब्जेक्ट रखा सारे दिन में, धारणा का इन्होंने ध्यान रखा। मैंने ये तो सुबह मुरली चलता है वो सब ठीक है, और सेवा बाबा प्रेरणा देते थे बच्चों को लिखते थे, बाकी ये जो सब्जेक्ट 2 है, धारणा और योग, ये 2 बाबा मम्मा का सारा दिन का अभ्यास होता था। तो हम लोग भी इस समय पर इन 2 बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी दादियां भी उसी पर ध्यान दे रहे हैं। कोई दादियां आपको इस समय पर ये नहीं कहेंगे कोई जाके प्रदर्शनी करो, ये करो, वो करो, वो कोई बात नहीं, दोनों ही बात कर रहे हैं। तो इसलिए आप भी महान भाग्यशाली हो जो यहां इस समय पर तपस्या और धारणा, ये 2 बातों पर ज्यादा ध्यान देंगे, ऐसी आशा करते हुए मैं अपना ये 2 शब्द समाप्त करता हूँ। ओम शांति।
बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। है सांझ सवेरे मन में।